وكفى وسلام على عباده الذين الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے یہ مضمون پیش کیا تھا، جن اس دنیا سے ہمیشہ جانا ہے. آہ، میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ، حضرت کا ایک جملہ بہت عجیب ہے. فرمایا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جو یہاں سے گیا ہو وہ واپس آ جائے. جانے والا اپنے وقت مقررہ پر گیا، اور جو گیا وہ واپس نہیں آیا. یہ حصول ہے، وقت پر گیا، اور وقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، وہ ان کے علم میں اور ان کے اختیار میں. وہ اس وقت کے کہ ہمارا ڈپارچر، یعنی اس پردیس سے اپنے وطن کو روانگی کا وقت کیا ہے، اور ایئرپورٹ کیا ہے، کس ایئرپورٹ سے لے کر جائیں گے، یہ وہ جانتا ہے. یعنی کب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور کس جگہ سے جائیں گے معلوم نہیں، کب اور کہاں سے یہ خبر نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے کہ یقینی ہے، بلکہ کہ جانا ہے، جانا یقینی. زیادہ حضرت نے فرمایا کہ جب یہاں سے جانا یقینی ہے اور جانے والا آیا نہیں ہے، تب حضرت کا جملہ ہے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، کیا دل لگا ہے. جو یہاں سے گیا، بڑے بڑے بادشاہ، مالدار، برطانیہ جوان تھی تو روزانہ دن میں وہ ملکہ اپنے محل کی کھڑکی میں آ کر بیٹھتی ہے یا گیلری میں، اس کو دیکھنے کا ٹکٹ لگتا ہے. جوانی کا عالم تھا، رش اتنا کہ دھکم پیل کی صورت. کوئی بڈھی ہو گئی، اب اس کو دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ عبرت ہے، جوان ہو، بادشاہ ہو، مال و دولت والے ہوں، یہ عارضی جگہ ہے. یعنی اس کی مثال، ہمارے مال و اسباب کی مثال ایسی ہے جیسے میں سفر کر کے مان لو لاہور چلا گیا، اب لاہور میں 5-star ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 5-star ہوٹل کی 5-star سروس، وہاں کے شاندار بستر، شاندار استعمال کی چیزیں، مان لو کھانا بہت اعلی بڑھیا، لیکن ظاہر بات ہے لاہور میں کسی کام سے گیا، دو رات دو روز رہا یا تین روز رہا، اب وہاں سے واپس آنا ہے. لہذا ہوٹل میں ٹھہرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کا، یہاں پر میں مسافر ہوں، میرا یہاں کا قیام عارضی ہے. لہذا وہ ان چیزوں سے دل نہیں لگاتا، کہتا یہ بستر، یہ مکانات، یہ ٹھہرنے کی جگہ، یہ سب ایک عارضی انتظام ہے، اچھا تو ہے لیکن ہم اس کو لے جا نہیں سکتے. یہی حال ہے میرے پیارے دوستو اس دنیا کا اور آخرت کا، کہ انتظامات ہیں. اللہ تعالی نے آسمان بنایا، زمین بنائی، अल्लाह ताला ने बागात, फल, फूल, बेशुमार नेमतें अपने कर्म से चारों तरफ फैला दी, हमारे दाएं, हमारे बाएं, हमारे आगे, हमारे पीछे, ऊपर नीचे, सूरज अता फरमाया जिसका कोई बिल नहीं देना पड़ता, सूरज की रोशनी के लिए कुंडा नहीं डालना पड़ता, सूरज की रोशनी के लिए बिल नहीं देना पड़ता, पानी अता फरमाते हैं मुफ्त में। लिहाजा एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम यह है कि अगर बंदा मेरी फरमाबरदारी करे तो मैं उस वो रात में सोए में ऐसी बारिश दूं कि सुबह उठे तो उसके काम काज में खलल ना हो, लेकिन आसार से पता चले कि बारिश हुई है। चीज ये नेमत फरमाबरदारी, और जब फरमाबरदारी की बात की जाए तो उससे मुराद होती है नाफरमानी को छोड़ना भी, ये शामिल होता है। तो वो बारिश मिले, लगा अल्लाह ताला की तरफ से बारिश है, पानी है मुफ्त में, ये हमारे लोग उस पर टैक्स लगा देते हैं। अल्लाह ताला ने सूरज अता फरमाया, कोई बिल नहीं है लाखों करोड़ों साल से, और उनकी कुदरत का ऐसा जबरदस्त मजहरा ही है कि वो सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, अपने वक्त पर गुरूब हो रहा है। सर्दी गर्मी के औकात में अल्लाह ताला ने फर्क रखा हमारे शहर और मुल्क के हिसाब से, और सर्दी का रूट अलग है, गर्मी का रूट अलग है। गौर कीजिएगा, ये भी है, सर्दी का रूट अलग है, गर्मी का रूट अलग है। ये उन्होंने इस रूट के मुकर्रर फरमाने वाले वो हैं, ये उनकी कुदरत का जबरदस्त मंजर है। बिल नहीं, हाँ, बस इन नेमतों का शुक्रिया ये है, इन नेमतों का शुक्रिया ये है कि अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाए, ये इन नेमतों का शुक्रिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अरबी है जगह, दादा मेरे प्यारे शेख और क्या फरमाते हैं, जिस दुनिया से हमेशा के लिए जाना और फिर कभी लौटकर वापस ना आना, अब आगे क्या फरमाया, ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना। लहजा जब गए सफर किया, राहत की, इत्मीनान की, सहूलत की चीजों को इस्तेमाल तो करे, लेकिन दिल तो नहीं लगाएगा ना। लहजा यहां की जरूरियात ये हमारी जरूरियात है, इस्तेमाल करेंगे हम इसको, लेकिन मेरे प्यारे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं इन तमाम जरूरियात को हम दिल से बाहर रखेंगे, अपनी जिस्मानी जरूरत अपने राहत के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको दिल में जगह नहीं देनी है। इसको समझाने के लिए मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो, दुनिया और हमारी जरूरत, दुनिया की जरूरत है और हमारी मिसाल ऐसी है कि जैसे कश्ती और पानी की मिसाल, हमारे दिल की मिसाल कश्ती की तरह है, और इस दुनिया की जरूरत की मिसाल पानी की तरह है। अब कश्ती चलने के लिए पानी जरूरी है, बगैर कश्ती के, बगैर पानी के कश्ती चल नहीं सकती, इतना जरूरी है। अब कोई आदमी क्या करे, अच्छा इतना जरूरी है, उसने कहा साहब ये तो जमा करने की चीज है। लदा उसने क्या किया कि पानी को कश्ती में डालना शुरू कर दिया, जरूरी भाई जमा करो इसको। कहेंगे नहीं भाई, ये इसलिए जरूरी नहीं है, पानी कश्ती के लिए जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के अंदर नहीं बल्कि कश्ती के नीचे होना चाहिए, तहत। फारूमी रहमतुल्लाह अलैह की सुनिए जबानी, फरमाते हैं आप दर कश्ती हलाके कश्ती है, अगर आप पानी कश्ती के अंदर आएगा तो कश्ती को हलाक करने का जरिया बनाएगा, और आप जेरे कश्ती पुश्ती है, और जब पानी कश्ती के नीचे रहेगा तो उसको चलाने का जरिया बनेगा। बस फरमाया कि माल यही है, दुनिया यही है, कि जब तक दुनिया दिल के बाहर हो तो ये दुनिया آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور آخرت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور آخرت کے لیے بہترین کمانے کا ذریعہ ہے اور آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. اور یہی دنیا کی چیز اتنی ضروری اس کو دل میں جمع کرنا شروع کر دیا. اب یہی ہوگا کہ یہ ہماری تباہی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی جس کا مشاہدہ ہم دن رات کر رہے ہیں. جب تک یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو, کار ہو, کاروبار ہو. آہ, میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, کار ہو, کاروبار ہو, لیکن دل میں یار ہو. ہو نعمت ہے بھائی, لیکن مال نہیں ہوگا زکات کیسے دے گا, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیسے کرے گا, مسجد میں پیسہ کیسے لگائے گا, دینی تعمیرات میں پیسہ کیسے لگائے گا, اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کیسے کرے گا, مسلمان بھائیوں کے لیے کہیں پانی کی ضرورت ہے کنواں کھدوا دیا, نعمت ہے. کسی غریب کو بیمار ہے اس کی ضرورت کے لیے دوائی دلا دی, علاج کروا دیا, کتنی بڑی نعمت. جہاد کے مجاہدین کے لیے مال کی سے مدد کر رہا ہے, کتنی بڑی نعمت. تمام دینی کام میں لگے ہوئے ان کے مدارس, ان کے دینی کام, کتابیں دلا دی, کتاب لے کر کتاب تقسیم کر دی, کتنی بڑی نعمت. یہ سب مال پر ہے. اب ایک بات سنیے, اس سے ہمارا ایک علمی خزانہ ملے گا. غربا صحابہ نے, غریب صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو مالدار صحابہ ہے نا, جہاد کا معاملہ ہوتا ہے مال دیا, کئی مسجد بنائی پیسہ دیا, کسی غریب کی مدد ہے وہاں پیسہ دے رہے ہیں, اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور خوشی ہوتی ہے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, خوب مال خرچ کرتے ہیں. اغنیا صحابہ, مالدار صحابہ کا یہ دستور. اور غریب صحابہ نے عرض کیا کہ ہماری مجبوری کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر اس کو پڑھ لیا کرو 33 34 مرتبہ. ربا صحابہ نے یہ کام شروع کر دیا اور ہم لوگ بھی کرتے. یہ بتانا تھا علمی نعمت کہ دیکھیں نا, ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. یہ وہ غریب صحابہ کی اس سوال پر آپ نے ارشاد فرمایا, گویا ہماری آخرت میں کھیتی تیار ہو رہی ہے اس نعمت کی وجہ سے. اور قریب قریب آ جائیں. غربا صحابہ نے ایک کام شروع کیا, ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا. دنیا کو پتا چل گیا, وہ جو مالدار صحابہ تھے انہیں بھی خبر لگ گئی, یہ جو ہے نا ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں, انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو جو غربا صحابہ تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ جو صاحب, یہ جو تھے پہلے جہاد میں مال دے رہے ہیں, دینی کاموں میں مال دے رہے ہیں, ہم نے آپ سے آ کر شکایت کی, آپ نے ہمیں یہ ایک وظیفہ ارشاد فرمایا, تلقین فرمایا, عطا فرمایا, ہم نے یہ کام شروع کیا, یہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیا, اب ہم کیا کریں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ جو مال کا عطا فرمانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے, جس کو چاہتے عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر اس عطا فرما کر میرے مرشد فرماتے ہیں, مال کا صرف عطا ہونا یہ کمال نہیں ہے, اصل نعمت جو ہے کہ اس مال کے ساتھ دل عطا ہو اور وہ دل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں مال کو خرچ کیا جائے, اصل نعمت یہ ہے. آگے آ جائیے, قریب قریب آ جائیے. माल तो नेमत है, लेकिन असल जो नेमत है वो दिल हो कि उस माल को अल्लाह ताला की रिजा और खुशी में खर्च करें, और जहां अल्लाह ताला की नाफरमानी हो वहां पर माल को खर्च न किया जाए। ये माल का हक है, नाफरमानी में हमारा माल इस्तेमाल ना हो, ये माल का हक है। दुनिया की जो ये जरूरत, कितनी बड़ी नेमत है ये माल का अता होना, ये माल है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो दिल में ना हो, दिल में ये है कि पता चला जी माल कमाना बहुत जरूरी है, मशगूल है कमाने में, उसकी कमाई में जमात की नमाज छोड़ दी। मकसद सिर्फ ये हो कि हम जरा उस माल को कमाकर उससे अपनी गाड़ी, अपने मोबाइल, अपने लिबास से दूसरों को कि जी पता चले हमारा स्टेटस कैसा है। स्टेटस दिखाना मकसूद नहीं है, यही बात समझाई जा रही है कि वो माल, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माल हो, हाथ में हो, जेब में हो, इस्तेमाल बराए इस्तेमाल हो, दिल में ना हो। क्योंकि जिस दिन ये दिल में आ गया, मेरे प्यारे दोस्तों, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप दर कश्ती हलाके कश्ती अस्त। जब वो पानी कश्ती के अंदर आएगा, कश्ती को हलाक करने का जरिया बन जाएगा, और आप जेरे कश्ती पुश्ती अस्त। अब अगर वो पानी कश्ती के नीचे है तो कश्ती की रवानी और कश्ती के चलने का जरिया बनेगा। लिहाजा माल है, नेमत है, कब वो अल्लाह की रजा में खुशी में इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि हम अपनी जरूरियात के लिए और हम अपनी कामों के लिए शादी ब्याह में तो लाखों रुपया खर्चा करें और वो हमारा माल दीन में इस्तेमाल ना हो। इधर बैठ जाओ आप, हजरात थोड़ा सा और आगे आ जाए, इधर सामने आ जाए, फ्रंट लाइन पे आ जाए, निशान इधर आ जाओ, इनको थोड़ी सी जगह दे दो भाई। ये है मेरे प्यारे दोस्त कि माल होगा, दिल से बाहर होगा, उसको मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे नेमत अता फरमाई है, लेकिन मुझे इस माल का हक अदा करना है। और माल का हक सिर्फ ज़कात, फितरा और कुर्बानी वाजिब तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर हज नहीं किया तो हज है, और अपने गरीब रिश्तेदार वो भी इसमें शामिल है, उन रिश्तेदारों का भी हम पर हक है, और हमारे पड़ोसियों का भी हम पर हक है, और हमारे दीनी इदारे, दीनी खुद्दाम, याद रखिएगा, उनका भी हक है। हमारे दीनी इदारे ये हक रखते हैं, जो दीनी, उनकी दीनी जरूरियात को पूरा करना, ये हमारे माल में उनका भी हक है, और दर हकीकत ये उनका वो नहीं है, इसमें हमारा नफा और फायदा है। लिहाजा माल को ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी है मैं जो कैसे करूं। अर्ज किया था मैंने पिछले जुम्मे भी ये बात बताई थी, माल पर हमारा इख्तियार इतना है, हमारा माल दर हकीकत क्या है, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खा लिया, जो पहन लिया और जो आखिरत भेज दिया वो हमारा है, बाकी सब वारिसों का है। ये हम जो माल कमा रहे किसके लिए मेहनत करते हैं, वुरसा के लिए। और अर्ज किया था मरजुल वफात में है, जिंदा है, अभी जिंदा है, 30 लाख रुपए किसी के पास मौजूद है, वो कहता है मैं अपना सारा माल मस्जिद या मदरसे में देता हूं, सब उसको दे दूं। मोहतमिम साहब आलिम है, अल्लाह वालों के सोहबत याफ्ता है, उनकी खिदमत में आया कि हजरत बेटे को भेजा कि जाओ अब्बा के, कहा अब्बा ने ये 30 लाख रुपए अब्बा के पास कुल है, इंतकाल का वक्त करीब है, या आपको सारा पैसा वो आपके मदरसे में देना चाहते हैं। तो मौलवी साहब वो आलिम रब्बानी का ये इरशाद होगा कि ये सब पैसा नहीं दे सकते, उसमें से 1/3 एक हिस्सा, एक तिहाई, यानी 30 लाख में से 10 लाख दे सकते हैं वो, बाकी 20 लाख नहीं दे सकते। ये मसला है। लदा जो मालदार है अपने माल में वसीयत एक तिहाई पर कर सकता है, पूरे माल पे वसीयत नहीं कर सकता वो, सब एक तिहाई पर, 1/3। तीन हिस्से करे उसमें से एक हिस्से पर कर सकता है। लिहाजा अगर वो माल जिंदगी के अंदर, अभी वो जिंदा है जनाब, मरा नहीं है अभी वो, लिहाजा जिंदगी में हमारे माल पर हमारा इख्तियार खत्म हो गया, ऐसा है ये माल। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बात, मेरे मुर्शिद मसनवी के आशिक है, फरमाते हैं गर बरेजी, एक अजीब उन्वान है, फरमाते हैं गर बरेजी बहर रा दरकूजाई। हर इंसान का एक मिजाज है, एक फितरत है, एक तबीयत है, हमारी तबीयत है कि सारी दुनिया का माल मुझे मिल जाए, है ना मिजाज, और इस तकाजे का होना कोई बुरी बात भी नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है तकाजा, जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है उसके दरपे नहीं होना चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे माल के आमदन, माल का आना, यह हमारी इख्तियारी चीज नहीं है, हम असबाब के तो मुकल्लफ हैं, लेकिन हमें मिलेगा कितना यह हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उस माल को अपनी जेब से निकालना यह हमारे इख्तियार में। कितनी अजीब बात है कि जो हमारे इख्तियार में, ओ जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, दिए जाओ, और जब माल आने की बारी आती है बस वहां रोते फिरते। लिहाजा खर्च में इख्तियार हमें है, खर्च हमारा इख्तियार ही है, और आमद ये हमारे इख्तियार में नहीं है। खर्च में आपने फरमाया कि निस्फ मईशत यह है, निस्फ मईशत के इंसान खर्च में मियाना रवि इख्तियार करे। नई नई शादी हुई, बीवी को नया नया मामला है, मोबाइल भी लो, टिक्के भी खिलाओ, फला भी खिलाओ, अच्छी बात है, उसको खिलाना चाहिए, नहीं क्या पुरानी वाली को भी खिलाना चाहिए, लेकिन शुरू से जरा अपनी जेब देख ले कि मेरी जेब कितनी है, मैं महीने में कितने का इस अयाशी का, अयाशी मुबारक अयाशी है, लेकिन ये उस पर खर्च करने से अजर मिलेगा, लेकिन कितना मैं उसका बर्दाश्त कर सकता हूं ये देखना। अब शुरू में नया नया मामला है, हाँ ये भी लो वो भी लो, चलो शॉपिंग ये भी करो वो भी करो, आखिर कब तक। तो शुरू से अपने आमदन के हिसाब से मामला रखें कि जी मेरी इतनी आमदन है, लिहाजा आपको इस आमदन में गुजारा, हम और आप मिलकर गुजारा करेंगे। शुरू से खर्च जो है वो हमारे इख्तियार की चीज है, उसमें हम आजाद हैं, आमदन हमारे इख्तियार में नहीं है। तो हमारा मिजाज ये है कि सारी दुनिया की दौलत हमें मिल जाए। मारूमी फरमाते हैं गर बरेजी बहर रा दरकूजाई, ठीक है मिसाल है, अगर सारे समुन्दर को एक प्याले में डाल दो, बरेजी बहर रा दरकूजाई, तो फरमाते चंद गुंजत किस्मत यक रोजाए, वो जो खजाना है वो जो एक प्याले में जमा किया वो तो एक रोज में तकसीम हो जाएगा। यानी अगर एक आदमी के पास वो माल रहा तो एक आदमी के पास तो ठहर ही नहीं सकता, वो कैसे, अब मुझे भूख लगी है, अब मैं चाहता हूं माल बचा के रखूं, ऐसा भी नहीं हो सकता, रोटी वाले को देना होगा, सिक्का खा रहे हैं उसको देना होगा, कपड़ा लेने वाले को देना होगा, पेट्रोल डालने वाले को देना होगा, तो क्या होगा कि वो तकसीम होता चला जाएगा वो खजाना। और जब सारी दुनिया में फैला हुआ है तो हर एक को उसकी जरूरत का मिलता रहेगा। लेकिन अगर खजाना एक जगह जमा भी हो जाए किसी के पास तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर भी उसका हो नहीं सकता, उसकी जिंदगी में भी, उसके मरने के बाद भी। जिंदगी में इसलिए नहीं हो सकता कि वो खजाना मान लो उसके पास है, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, दूसरी जरूरियात के लिए चाहिए, ये लिहाजा मां ये समझा रहे कि देखो अगर तुम ये समझो कि सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए, और हमारे यहां मिसालें नजर आती हैं कि मान लो जो लोग अरबों रुपए के मालिक हैं, अभी भी हैं और थे भी, वो भी मरे, मरने के बाद क्या लेकर गए, मरने के बाद क्या लेकर गए, इस हकीकत को हमने याद रखना। और जिनके पास है, मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं, अगर किसी दिन तुम 10 लाख रुपए कमा लो, कितनी रोटी खाओगे? वही 2 रोटी ना, रोटी खाएगा। अगर किसी दिन 10 लाख भी कमा ले, वही 2 रोटी खानी, या उस दिन 10 रोटी खाएंगे, खा लेंगे तो फिर जो पैसा ज्यादा कमाए ना वो दवाइयों पे निकलेगा, ज्यादा पैसा आ गया ना फिर निकल गया उसी को। लिबास कितने पहन लेगा, कितने लिबास पहनेगा, कितनी गाड़ियों में सफर करेगा? फरमाया ये ऐसा है। अब आगे मारूमी रहमतुल्लाह अलैह अजीब नसीहत फरमाते हैं, फरमाते कि देखो फिर सीप अपना मुंह खोलता है, सीप जो है वो अपना मुंह खोलता है तो सीप के अंदर बारिश के कतरे आते हैं, तब वो क्या करता है, वो ये करता है कि अपने मुंह को बंद कर लेता है। नतीजा ये होता है कि कुछ दिन के बाद उस सीप के अंदर मोती पैदा हो जाता है, और जो सीप अपना मुंह को बंद नहीं करता, खुला रखता है और तो कतरे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन मोती नहीं बनता। तो फरमा रहे उसी तरह से जब तुम्हारा पेट भर गया, अल्लाह ने तुम्हारी जरूरत पूरी कर दी है, अब मखलूक की तरफ निगाह मत दौड़ाओ, लोगों की तरफ निगाह उठाकर मत देखो, उससे भी मिल जाए, उससे भी मिल जाए, मालदारों से भी दोस्ती कर लो, फलां से भी दोस्ती कर लो, हर एक से जो मुंह खोल के रखेगा और कनाअत की दौलत से महरूम रहेगा, ये क्या होगा, मुंह तो खुला रहेगा और माल मान लो आ भी जाएगा लेकिन पुराना किसी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन माल आने के बावजूद कनाअत की दौलत ना होने की वजह से सारी जिंदगी परेशान रहेगा। और वो आदमी, वो गरीब आदमी जो चटनी रोटी खाए और चटनी रोटी खाकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, अब किसी बिरयानी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता, मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ा मालदार आदमी है, बहुत बड़ा मालदार आदमी है। मालदार दर हकीकत वो है कि जो किसी के माल पर निगाह उठाकर ना देखे, क्यों, इसलिए कि वो समझ रहा है मेरे पास दौलत मौजूद है, और जिसके पास दौलत है और उसको मजीद की हिर्स और लालच है, जिसको सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना भी फरमाया समझाया कि अगर किसी के पास 2 सोने की वादियां हो लेकिन हिर्स और लालच ऐसी चीज है वो तीसरी पर नजर रखेगा। जिस आदमी के कल्ब में लालच की दौलत होती है, लालच होता है जिसके दिल में, लालची आदमी, तो वो अपने माल को नहीं देखता कि मेरे पास क्या माल है, बल्कि वो दूसरे की जेब पर नजर रखता है, दूसरे पर नजर रखता है। जैसे एक आदमी है उसके पास 10,000 रुपए हैं, मिसाल जेब में रखे हुए 10,000 रुपए और उसके अपने पैसे हैं, लेकिन दूसरे की जेब में 100 रुपए नजर आएंगे ना उसको देख रहा होगा, बार बार उसको देखेगा, आप घबराइए मत, इनकी जेब में कुछ नहीं है। क्या लालच है कि अपनी जेब में 10,000 मौजूद है, दूसरे की जेब को देख रहा है, 100 रुपए पर पागल हो रहा है, देखो इधर बैठ जा, इस तरफ आ जा, आप इधर हो जाए, आप भी उधर हो जाए, आप लोग सामने बैठा करें, बड़ी उम्र वाले हजरात सामने बैठा करें, छोटी उम्र वालों को सामने नहीं बैठना चाहिए, और अकलमंद के लिए इशारा काफी है। इंसान अपने पास 10,000 मौजूद है, उसको मालूम है मेरे पास है जेब में, लेकिन आप भी उठ के चले जाओ, लेकिन दूसरे रुपए दूसरे की जेब का 100 रुपया नजर आता है, इसका मतलब है इसके कल्ब में लालच है, ये लालची आदमी है जो दूसरे की माल पर नगाह रखे हुए। और वो आदमी जिसकी जेब में मान लो 50 रुपया है, वो किसी को नहीं देखता, क्यों, कनाअत की दौलत है, कनाअत की नेमत इसके पास है, वल्लाह ये मालदार है। लादा मालदारी दर हकीकत गरीबी और अमीरी इसके ये फर्क नहीं है, हकीकी मालदारी तो यह है कि मेरे दोस्तों सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसल गिना अन कसरतिल अरज, मालदारी इसका नाम नहीं है कि शानदार गाड़ी है, शानदार मकान है, जबरदस्त मोबाइल है, जबरदस्त लिबास है, बिरयानी या कबाब खाता है, प्लॉट भी है। मालदारी इसका नाम नहीं है। लैसल गिना अन कसरत अल अरज वलाकिन अल गिना गिना नफ्स। हकीकी मालदारी है कि बंदा अपने कल्बो जान से दूसरों के माल से मुस्तगनी हो, सिर्फ अल्लाह पर नजर रखने वाला हो, ये हकीकी मालदारी है। हजा हमारे बुजुर्गों की शान ये रही है, अल्लाह वालों की शान ये रही है, कुछ नहीं है। लेकिन अपने बुजुर्गों की सोहबत की बरकत से अल्लाह ताला की मोहब्बत और जो दर्द हासिल किया है और उस अल्लाह ताला को अपने दिल में हासिल किया है, नतीजा यह है। सोना तो नहीं है उनके पास, लेकिन सोने का खालिक उनके पास है। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि लोग आपको शाह साहब कहते हैं, अल्लाह वालों को क्या कहते हैं? शाह साहब। कहा कि बादशाह आपको कहते हैं, बादशाह के पास सोना होता है, आपके पास कितना सोना है? लोग आपको शाह साहब कहते हैं। मेरे मुर्शिद, मेरे शेख हजरत अकदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकातुहू ने यह वाक्य सुनाया कि कहा कि हजरत आपको लोग शाह साहब कहते हैं, आपके पास कितना सोना है? उन बुजुर्ग ने फरमाया, आह बखाना जर नमी दारम फकीरम, कि मेरे घर में सोना नहीं है, मैं फकीर हूं। देखो ये जाग रहे, सो रहे, देखते रहो मुझे ना, तो मुझे शुबा ना हो। बखाना जर नमी दारम, मैं अपने घर में सोना नहीं रखता। बखाना जर नमी दारम फकीरम, मैं तो फकीर हूं। लेकिन शाह साहब जिस वजह से सुन कहते हो, जरा ये भी सुन लो, वले दारम खालिके सर अमीरम, लेकिन आह मैं अपने दिल में सोने के पैदा करने वाले को रखता हूं, मुझसे बढ़कर कोई अमीर नहीं है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से गुजरे हैं, हमारे असलाफ में से हैं। हजरत की शान देखिए, जिस जगह हजरत वुजू फरमाते थे वहां पर घास उगाई, काई और घास उगती, तो उस काई को और घास को कीमियागर यानी सोना बनाने वाले ले जाकर उससे सोना बनाते थे। अफ़ज़ल रहमान साहब गजमुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का यह आलम कि उस काई हजरत की करामत थी है कि उस काई से सोना बनाने वाले सोना बनाते थे, वो ले जाते थे। एक दिन हजरत ने देखा कि मजमा लगा हुआ है, फरमाया अरे भाई ये मजमा कैसा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तब बताया कि हजरत ये कीमिया कर रहे हैं, जहां ये उस जगह वजू फरमाते हैं तो वहां पर जो घास उकाती है ये उस घास को ले जाते हैं और उससे फिर सोना बनाते हैं। हजरत ने फरमाया सबको बुलाओ, सबको बुला लिया, फिर फरमाया कि सुनो, अरे मियां तुम कब तक सोना बनाओगे और कब तक सोने को अपने पास रखोगे और मरोगे तो कितना सोना अपने साथ लेकर जाओगे? अरे सोने के चक्कर को छोड़ो, जर को छोड़ो, खालिक जर को हासिल करो, अपने दिल में अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक को पैदा करो, ये वो तुम्हारा माल है जिसको तुम अपने साथ लेकर जाओगे। वरना अगर सोना जमा किया, मरने वाला कितना सोना अपने साथ लेकर जाता है? क्यों भाई साहब, जरा बताइए इसको कि कौन मरने वाला अपने साथ अपने सोने को, अपने डॉलर को, अपनी गाड़ी को, अपने मोबाइल को, अपने एयर कंडीशन को, अपने प्लॉट को, अपने मकानात को, अपने लिबास को कौन लेकर गया है? एक मिसाल हो, अकाउंट खुलवाना है तो आखिरत का अकाउंट खुलवाए। स्विट्जरलैंड में अकाउंट क्या खुलवाता है? उसका नाम क्या है स्विट्जरलैंड का? असल में वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जर यानी जितना काला पैसा है उस लैंड वाली जमीन में दाखिल करो, काला पैसा स्विट्जर, सारे हराम की आमदनी वहां जमा करो, मुल्क को लूटो, लूट खसूट करो, लोगों का माल लो, फिर उस स्विट्जरलैंड में जमा करो। उसका नाम दर हकीकत क्या है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड है। और वो भी इतने पक्के हैं, हमारे अरब हुक्मरानों की दौलत वहां जमा की, माल जमा करने के लिए उन्हें हुकूमत से उतरे नहीं अभी, सब अकाउंट फ्रीज कर दिए। तुमको क्या हक पहुंचता है दूसरे के अकाउंट फ्रीज करने का? तुम वो पैसा उसकी कौम को दो, उसके मुल्क को दो। लेकिन ये तो लालची कुत्ते हैं ये लोग, ये ऐसे हैं। उससे ये पता चला माल कितना बेवफा है कि ले जाने वाला माल जमा करने वाला क्या करेगा, ऐसे है ये। और जिन लोगों पर एतमाद करते हैं, जिन पर एतमाद करते हैं, जिन यहूदों नसारा पर जिनकी गुलामी पर फख्र करते हैं, अल्लाह वालों की आह जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या अजीब मजमून, फरमाते हैं कि पेशे अबलहा अहमक और बेवकूफों के सामने तू तवाजो करदा, पेशे अबलहा तू तवाजो करदा, पेशे अबलहा तू तवाजो इख्तियार करता है, आजी करता है, अहमक और बेवकूफ जिनकी पतलूनों के अंदर पेशाब भरा हुआ है उनके सामने तू तवाजो इख्तियार करता है। ऐ तू तवाजो करदा पेशे अबलहा अहमक और बेवकूफ जिनको पेशाब करने का सलीका नहीं है, खड़े होकर पेशाब करते हैं, जिनकी जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता, जिनकी पतलूनों में पेशाब भरा होता है। ऐ तवाजो करदा पेशे अबलहा उनके सामने आर्जी, जनाब आली सरकार, जनाब आली, इनकम टैक्स ऑफिसरों के सामने, सर सर कैसे जूतियां सीधी कर रहे हैं उनकी, तवाजो इख्तियार करते हैं। आ और रूमी फरमाते हैं, अब दर्द देखिए, ऐ तकब्बुर करदा पेशे शाह, अल्लाह वालों के सामने तू तकब्बुर दिखाता है और अकड़ता है उनके सामने, से नफरत और ऐसे बात करते हैं अकड़ी हुई, और जिनकी पतलूनों में पेशाब भरा हुआ है, आ क्या मिजाज है, ऐ तकब्बुर करदा पेशे शाह, ऐ तवाजो करदा पेशे अबलहा अहमक और बेवकूफ कहता है जी सरकार जी सरकार, और ऐ तकब्बुर करदा पेशे शाह, अल्लाह वालों के सामने शाहों के सामने तू तकब्बुर उनके सामने है और अकड़ता है उनसे। मेरे प्यारे दोस्तों, आ जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा है। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अरे जो गया कोई अपने साथ नहीं लेकर गया, अरे जिसने इस सिफत को, इस चीज को अपने अंदर हासिल कर लिया कि अपने दिल को इस माल की मोहब्बत से निकाले, वो आयत यही है कि इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम यौम ला यनफउ मालु वला बनून, कि उस दिन न माल कमाएगा न औलाद कमाएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, उस दिन क्या सेहतमंद दिल काम आएगा, यानी जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक और नूरानी दिल, कल्ब सलीम, यानी जिस दिल में लालच ना हो। और उसकी पहली सिफत यही है अल्लज़ी युन्फिकु मालहू फी सबीलिल बिर, इसी गुज़िश्ता जुम्मे इस पर भी बात पेश की थी। आज कुछ नए मजामीन अल्लाह ने अता फरमा दिए, तकरार मजामीन हो गया कि क्या दिल में लालच ना, माल को खर्च करे अल्लाह के रास्ते में। इन पर दीन वालों पर यह मुसलमानों की याद रखिएगा जिम्मेदारी है, मुसलमान इसको ये नहीं कह सकता तो हर मर्ज का इलाज ज़कात नहीं है, ज़कात दे दे तो हम अपना मैल कुचैल देंगे तो ठीक है, ऐसे मुस्तहिक है जहां माल तो इस्तेमाल हो जाएगा ज़कात भी, लेकिन हम अपना मैल कुचैल देंगे तो आगे से भी मैल कुचैल ही मिलेगा। अरज कहता कि माल पर यह समझना कि हमारा हक, यह माल हमारा है, हमारा माल नहीं है। अरज क्या जिंदगी है, जिंदा होते हुए माल पर से हक खत्म हो जाता है। तो पहली सिफत यह कल्ब सलीम की, अल्लज़ी युन्फिकु मालहू फी सबीलिल बिर, या अल्लाह मालूसी या सैयद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर रूल मानी, जिसको हमारे प्यारे शेख मेरे मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दान बरकातुहुम अलैह ने हमें पढ़ाया और सिखाया। तो कल्ब सलीम जो कयामत के दिन काम आएगा, यानी सेहतमंद दिल, नूरानी दिल, उसकी पहली सिफत क्या है कि वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता, हरीस हो माल खर्च करता। नवाब साहब का अजीब बात है, बीमार होते सिर्फ आला डॉक्टर की के पास गए, सबसे बेहतरीन डॉक्टर, उससे कहा दवा लिखें, सबसे उम्दा दवा। मेडिकल स्टोर में भेजा कि मालूम करो ये दवाई कितने की, पर्चा बनवा के लिया। बस वो पर्चा बनवा के लाता कि इतने की दवा है, वो सारा पैसा वो किसी गरीब मस्कीन और तुलाबा पर खर्च कर देते और कुछ दवा ना खाते। अजीब उनका मिजाज। अच्छा, मेडिकल स्टोर वाले से वो भी लिखवाया, डॉक्टर की फीस भी दी और मेडिकल स्टोर वाले को भी पैसा देते और फिर बाकी जो पैसा वो कीमत है वो सब तुलाबा पर खर्च कर देते। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये, अल्लाह की शान के अच्छे हो जाते। इसलिए मेरे मुर्शिद, मेरे शेख फरमाते हैं कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ अल्लाह से रुजू भी कर लो, क्योंकि डॉक्टर के तो चक्कर लगाए हम, उसके दर के चक्कर ना लगाए। क्या मतलब? उससे ना मांगे। अब आलम क्या है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, मर्ज की तशखीस ही नहीं हो रही, जो बीमारी है वो डायग्नोस ही नहीं हो रही कि मर्ज क्या है, और डॉक्टरों पे चक्कर के चक्कर, लेकिन दो रकात पढ़ के अल्लाह से नहीं मांगते हम। दादा बीमारी पे बीमारी, मर्ज पे मर्ज, पता ही नहीं चल रहा मर्ज क्या है, इलाज पे इलाज, पैसा सब जा रहा है। फरमाया दो रकात तो पढ़ लो, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह, इलाज सुन्नत है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर के दिल में जो मर्ज है वो डाल दीजिए, तशखीस करवा दीजिए। फरमाया फिर दो रकात और पढ़ लो, डॉक्टर ने दवा लिखी, अब एक दो उसमें ये भी दुआ मांगो कि मर्ज की तशखीस हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, उस मर्ज के लिए जो दवा मुफीद है वो उसके जहन में डाल दीजिए। दो बातें होगी ना, एक पहले मर्ज की तशखीस, नंबर दो जो दवा मुफीद है वो उसके जहन में डाल दीजिए, नंबर तीन उस दवा में असर डाल दीजिए कि मर्ज अच्छा हो जाए। देखा आपने साहब, तीन बातें, क्योंकि बाद मरता मर्ज तो तशखीस हो गया कि मर्ज यही है भाई, ओहो डॉक्टर कहता अल्लाह, ओहो ये मैंने क्या दवा लिख दी। इसलिए बाद मरतबा उल्टी दवा भी असर करती है, दवा उस काम की ना हो, उस काम के लिए ना वो असर कर जाती, क्यों? उनकी खुशी है। बाद मरतबा मारूमी रहमतुल्लाह इसको यूं फरमाते हैं, क्या अजीब है देखिए, फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं किसी बंदे से तो बादाम का तेल, जो खुश्की दूर करने के लिए होता है कि नहीं भाई, फरमाते हैं कि जब बाद अल्लाह नाराज होता है तो बादाम का तेल, जिसका जो इस खुश्की को दूर करता है वही बादाम का तेल खुश्की और बढ़ाता है। क्यों? उस मुअस्सिर हकीकी का असर उसमें नहीं है, यानी वो असर हटा लेते हैं। और बाज मरतबा ये आलम भी होता है कि मर्ज बढ़ाने वाली चीज मर्ज को हटाने का जरिया बन जाती है। खुद हदीस मां जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खुद वाकया लिखा कि एक जमाना था हजरत को, आप बीती के अंदर आते थे, वाकया लिखा कि बहुत अजीब, पूरे जिस्म में दाने हो गए, पानी पानी, अजीब हाल कि हजरत सिर्फ एक कमरे में महदूद हो गए। शेख उल हदीस मां जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक कमरे में महदूद हो गए। हजरत जो है दो चीजों के बड़े आशिक थे, एक तो गोश्त के आशिक थे और वो भी मिर्चों वाला, मिर्चों के, और ऊपर ठंडे पानी के, ठंडा पानी ये नहीं, यख ठंडा जिसको बोले, यानी पानी की ठंडक में जो कमाल हो वैसा पानी। और यही शौक और जौक हमारे हजरत मीर साहब दामत बरकातुम का है, हमारे शेख के जो खादिम है, हजरत के साथ 40 बरस से हैं और हजरत की किताबें वही लिखते हैं, ये शौक उनका। एक साहब आए, हजरत कूलर ऐसा कि उसमें पानी नहीं होता, सिर्फ बर्फ होती है, वो ही जो बर्फ थोड़ी पिघलती है उसी को पीते। एक साहब आए कि हजरत ठंडा पानी है? फरमाया कि जी है इसमें। अच्छा कहा, लेकिन मीर साहब ने फरमाया कि देखो ये बहुत ठंडा है, इसको ना पीना। कि मैं ठंडा पीता हूं? फरमाया ये बहुत ठंडा है। कहा हजरत मैं बहुत ठंडा पीता हूं। अच्छा भाई अब क्या बोले? अब उन्होंने खैर पानी पिया, और मैंने बता दिया वो सिर्फ बर्फ होती है। लोग तो पानी में बर्फ डालते ना, वो बर्फ में पानी डालते हैं, बर्फ में पानी डाला फिर उसको यू करके फिर उसको, ऐसा उनका शौक। वो साहब ने पानी पिया और चले गए। रोजाना आने वाले 3 दिन नहीं आए, 4th दिन आए। मीर साहब ने उसको देखते सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, अरे भाई आप कहां थे? उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मीर साहब ने पूछा ये क्या हुआ? कहा था तो जो ठंडा पानी था। अब बताने लगे, फरमाया भाई हम आपको मना कर रहे थे। क्या बताया कि हजरत बस मैं यहां से बाहर निकला पानी पीकर और बस मेरा गला पकड़ा गया। तो इसलिए कहा कि हर एक की नकल नहीं करनी चाहिए। बर्फबारी का जमाना, हमारे शेख पहाड़ों में तशरीफ ले गए, मीर साहब साथ थे। अब वहां सब सर्दी से कुछ चादरें जैकेटें और वो मलमल पहने में आस्तीन चढ़ाई, बटनों को खोला, उफ़ इन लोगों ने पंखा नहीं लगाया। बारिश से लोगों का बुरा हाल है, वो पहाड़ों में सब ऐसा, और क्या फरमा रहे, बस आस्तीन चढ़ाई, घरे बांध के बटन खोल के ऐसे, 3 लोगों ने पंखा नहीं लगाया हुआ यहां पर, ऐसा हालत। ताकि शान है यक ठंडा पानी। तो शेखुल हदीस मां ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मिर्चों के आशिक, गोश्त दो चीजें, और तीसरी चीज ठंडा पानी, यक ठंडा पानी, सर्दी हो गर्मी हो। तो हजरत के दाने निकले हुए शेखुल हदीस साहब पूरे जिस्म में। एक खिड़की कमरे की थी जो बाहर गली में खुलती थी। शागिर्द को बुलाया और उसको पैसे दिए, कहा जा वो बाजार से जो ना चपली कबाब ले आ और खूब मिर्चे डलवाना उसमें। अब आप सोचे जिस आदमी के जिस्म में दाने हो और पानी भी निकल रहा है तो उसको गोश्त खाने की इजाजत होगी और फिर मिर्चे क्यों जनाब? अब वो शेख ने क्या फरमाया, कबाब लेकर आ और खूब मिर्चे डलवाना उसमें, और देख घर में से ना ना इधर चुपके से खटखटाना दे देना। तो हजरत खुद फरमाते हैं, अब वो शागिर्द था, अब शागिर्द ले आया, डांट भी लगाई, जा लिया चुपके से ले आया और हवाले कर दिया। अब हजरत ने कबाब खाया। अब इन अल्लाह वालों की इन अल्लाह वालों की उल्टी भी सीधी होती है। ये जो अल्लाह वाले, जो अल्लाह के खास लोग होते हैं, इनकी नकल करना जायज नहीं है, इनकी नकल ना की जाए, ये इन्हीं के साथ मामला होता है। इनकी उल्टी भी सीधी होती है। अब इनकी उल्टी सीधी कैसे देखें? अब नतीजा ये हुआ कि हजरत कबाब खाए, लेटरीन चले गए, लेटरीन का दरवाजा ही नहीं खुल रहा। आधा घंटा, एक घंटा, कई घंटे गुजर गए और पूरे जिस्म में दाने भरे हुए, चेहरा वगैरह। अब कई घंटों के बाद जब लेटरीन से बरामद हुए, बाहर तशरीफ लाए तो देखा पूरे जिस्म पर एक दाने का निशान नहीं है। अब सब हैरान कि हजरत क्या खरीद, मामला क्या हुआ, हम तो परेशान हो गए। फरमाया भाई बात यह है कि मैंने वो जो मिर्चों वाला कबाब खाया, बस पेट में मरोड़ उठे, लेटरीन गया तो ऐसे जबरदस्त मुझे इस्तिंजा लगा, सारा पेट खाली हो गया। कहा लेकिन उसका नतीजा यह था कि जो जिस्म के अंदर फासिद मादा था, जिससे पूरे जिस्म में दाने थे, अल्लाह की शान के वो पेट जो इस्तिंजा दहादर मोशन आए, वो जो पेट खाली हुआ तो वो जो दाने सूखना शुरू हो गए। तो मैं जो कहा पूछा, हजरत वो लेटरीन में इतनी देर है लेकिन आपने क्यों लगाई? फरमाया बात ये, वो दाने सूखे, मैं उन दानों को उखाड़ रहा था, और जब बाहर वापस आए तो पूरे जिस्म पर एक दाने का निशान नहीं। क्या है इसको कहते हैं, अल्लाह वालों की उल्टी भी सीधी होती है। कि जो मैंने अर्ज किया था कि वो चीज जो मर्ज को बढ़ाने का जरिया है, इन अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ये नेमत अता फरमाते कि वो मर्ज उसी चीज से जो जानलेवा है वही जान दे रही है। ये क्या है असल में, इसमें
اصل اس کی چیز کیا ہے کہ اس میں اثر کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے. لہذا وہ دوا جو بیماری دور کرتی ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہی دوا جان لینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہم ڈاکٹر کو بولتے ہیں, ڈاکٹر بیچارہ بے بس ہے, یہ ڈاکٹر کے اختیار کی چیز نہیں ہے بھائی. جہاں سے یہ کام چل رہا ہے وہاں رابطہ کریں, اور وہ رابطہ کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں سنت کی اتباع میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اس کے ذہن میں صحیح مرض کی تشخیص فرما دیجئے. نمبر ایک. نمبر دو, اس مرض کے حساب سے جو دوا جس میں میرے لیے فائدہ ہو وہ دوا اس کے ذہن میں ڈال دیجئے, نمبر دو. اور نمبر تین, وہ دوا لی, اللہ میاں اس دوا میں اثر ڈال دیجئے. ہاں تب بات بنتی ہے, ورنہ دوا بھی ٹھیک ہو. اسے ڈاکٹر دوا کہتے سر پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ دوا بالکل ٹھیک ہے لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ دوا میں کچھ گڑبڑ ہے, وجہ یہ وہاں سے فیصلہ ہے. اور جب وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو میرے دوستو پھر مرچوں والے کباب بھی بیماری دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سمجھ گئے جناب؟ پیارے دوستو, قلب سلیم, یہ بھلا چنگا دل, وہ دل یہ ہمارے کل قیامت کے دن کام آئے گا, یہ ہماری مال اولاد رہے گی. لہذا قلب سلیم کی پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی علامت کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا. اس لیے ہمارے بزرگوں کا, اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو ہم اپنے مریضوں کا علاج کالے بکرے سے کرتے ہیں کہ صدقہ دو کالا بکرا. تو بھائی صدقے میں بکرے کی حیثیت ایسی ہے کہ صدقے کے لیے بکرے کو کیوں خاص کر لیا, اور وہ بھی کالا بکرا, کہ کالا بکرا ساری کالی بلاؤ کو لے کے چلے جائے گا. کہتے نا کالا بکرا کالی بلاؤ کو, جان کے بدلے میں جان. ایسا نہیں ہے بھائی, اصل میں صدقہ ضرورت پر آگے آ جائیے, صدقہ ضرورت پر ہے. یعنی جہاں ہم نے صدقہ کرنا ہے جس کو دینا چاہتے ہیں اس کی ضرورت کو دیکھا جائے. اب جیسے ایک آدمی مان لیجئے کہ غریب آدمی ملا, ہم اس کو چاہتے ہیں ہم اس کی مدد کریں. اب ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں بھائی تجھے بکرا دیں گے. اب اس کو ضرورت اس وقت ہے دوا کی, کیونکہ اس کو موشن لگے ہوئے. اب اس کو گوشت کھلائیں گے تو کیا حال ہوگا بھائی, کیونکہ ڈاکٹر نے تو گوشت منع کیا ہوا ہے. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دوا کی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نقد جو ہے, نقد یعنی کیش, یہ زیادہ اچھا ہے کہ کیش دو. لیکن اندیشہ ہے کہ کیش دیں گے تو یہ اپنے اللہ تللے میں اڑا دے گا, انسان ہے. تو لہٰذا ٹھیک ہے بھائی, بولے آپ کو کیا, پوچھ لے جس کو دینا چاہتا ہے اس سے پوچھ لے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. کہ جی ہمیں ضرورت ہے کہ جی مجھے دوائی چاہیے. کہ اچھا لائیے پرچہ, کون سی دوا چاہیے, پرچہ دیا, اپنی جتنی حیثیت تھی اتنی دوا اس کو لا کے دے دی, ختم. پتا چلا اس کے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے, کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے, کسی کو لباس چاہیے. تو جیسی ضرورت ہوئی, کہیں دینی ادارے میں خرچ کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے جی جناب آپ بتائیں میں اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بھائی سریا لا دو, سیمنٹ لا دو, یا ہمیں مزدوری دینی ہے, بھائی اس سے پیسہ دے دو, یہ ٹھیکے دار صاحب آپ اپنے ہاتھ سے دے دو, ختم. لیکن جو ضرورت ہو اس پر خرچ کرنا در حقیقت یہ ہے. اب یہ تھوڑی ہر ایک کا علاج صدقے کے بکرے سے ہوگا, یا قربانی کی کھال اسے پہنا دیں گے. قربانی کی کھال پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا, ذرا کچھ نورانی قاعدہ پڑھ پڑھ کے, یا تھوڑا سا بزرگوں کے پاس بیٹھے, یا مدرسے میں ایک دو درجے پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں. ایسے ہی وہ صاحب تھے مولوی صاحب, ان کی کسی سے آنکھ لڑ گئی. दिन उस लड़की ने बड़े रोमांटिक मूड में कहा, आज जो मांगोगे वो तो मैं दूंगी। उसने कहा अपनी कुर्बानी की खाल मेरे मदरसे में दे देना। सदका क्या है? जरूरत को पूरा करना, कि जिसकी जो जरूरत है। लादा उसके लिए नहीं कि काली बला, अरे भाई ये काम अच्छा नहीं है कि दाढ़ी से ये खेलना, ये दाढ़ी से ये करते हैं। ये जो आदमी ये दाढ़ी से खेलेगा ना, एक तो उसकी दाढ़ी खराब हो जाएगी। अब है हर वक्त यूं नोच रहे हैं, बाजों को ऐसे आदत होती है, तो ये दाढ़ी का ऐसे चढ़ाना ये भी एक गुनाह है, हराम है। दाढ़ी ऐसे होनी चाहिए, एक मुट्ठी दाढ़ी ऐसे रखे, और फिर यूं यूं करेगा बाल गिरेंगे। तीसरा काम ये होगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज में भी यूं यूं कर रहा होगा, ऐसे ऐसे नमाज भी खराब होगी। किसी को मूछों को ताव देने की आदत है, नमाज में भी मूछों को ताव दे रहे, ऐसे ऐसे पूरी नमाज में ऐसे ऐसे खुजलिया कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दाढ़ी कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, अगर इतनी देर करता रहा ऐसे है पूरी ऐसे, तो ये तो अमले कसीर हो जाते, जिससे तो नमाज टूट जाती है, उसको होश ही नहीं है। इसलिए ये काम अच्छा काम नहीं है, दाढ़ी से खेलने का, इसको छोड़ देना चाहिए इसके हाल पर। उसी तरह से एक मसला और भी याद रखें, पहली सफ में खड़ा है कोई आलिम आ गया, कोई अल्लाह वाला आ गया, तो अदब यह है कि उसको पहली सफ में जगह दे, खुद पीछे चला जाए। अपना बाप आ गया, उस्ताद आ गया, शेख आ गया, अदब यह है कि खुद पीछे चला जाए, उसको पहले जगह दे। इसमें अल्लामा शामी इब्ने आब्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसको दो दो सवाब मिलेंगे। एक तो पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मुफ्त में मिलेगा उस अदब की वजह से, और दूसरा अजर उसको यह मिलेगा इकराम आलिम का, उस अपने बड़े के इकराम का भी अजर मिलेगा। और यह अदब बहुत बड़ी चीज है, अदब बहुत बड़ी चीज है। यहां तक कि मेरे शेख ने फरमाया कि इतना भी अदब करो कि जूती अपनी उल्टे हाथ में उठाओ, सीधे हाथ में मत उठाओ, जूती को भी उल्टे हाथ में उठाए, सीधे हाथ में ना उठाए। मेरे प्यारे दोस्तों, सदके की बात कर रहा था कि जो जरूरत हो वहां खर्च करें। तो कल्बे सलीम की पहली सिफत क्या है कि माल अल्लाह की रिदा और खुशी में खर्च करना, यह पहली अलामत है कि वो माल खर्च करने वाला। नंबर दो, और अर्ज किया था कि जब तक हमारे लोग, हम लोगों में सदका करने की आदत ज्यादा, नतीजा यह था कि हम पर बलाए मुसीबतें कम। पर्ची सिस्टम नहीं, भत्ता सिस्टम नहीं, कब्जा सिस्टम नहीं, और जब से हमने माल देना छोड़ दिया अल्लाह के रास्ते में, तो नतीजा यह है कि पर्ची सिस्टम, भत्ता सिस्टम, कब्जा सिस्टम सब चल रहे हैं, क्योंकि माल निकलना है। अगर हम उसको खैर के रास्ते में निकालेंगे तो वो हमारे लिए खैर और भलाई का जरिया बनेगा, और खैर के रास्ते में नहीं निकालेंगे, निकलेगा तो सही, वो बात की थी ना, ठहरता नहीं है। समुंदर भी प्याले में डाल लो ठहरेगा नहीं। दूसरी सिफत क्या है? अल्लज़ी युर्शिदु बनीन अलहक, ये कल्बे सलीम की दूसरी सिफत है। और अर्ज किया कि इस सिफत को हमने पैदा करना है, अगर है तो शुक्र अदा करें, नहीं है तो इसकी फिक्र करें। लिहाजा हमें पता चले ना, हमने कल्बे सलीम, जब आखरत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो आखरत में कल्बे सलीम लेकर आएगा, तो हमें उसकी सिफात मालूम हो, अलामात मालूम हो, ताकि हम उस पर मेहनत कर सके। दूसरी सिफत यह है अल्लज़ी युर्शिदु बनी इलल हक, जो अपनी औलाद को हक का रास्ता बताए, रुश्द और हिदायत करे अपनी औलाद को। लिहाजा औलाद के हुकूक में से है पहला हक, जबकि वो औलाद इस दुनिया में भी नहीं आती, पहला हक यह है कि उस औलाद के लिए जिस खेत का हम इंतजाम कर रहे हैं, कि जिसके जरिए से हमें औलाद मिलनी है, उसके लिए हम ये इंतजाम करें कि वो नेक, आफीफा हो, पाक दामन हो, अपने लिए बीवी के इंतखाब में नेक बीवी का इंतखाब करें। आज हमारे मामला जरा उल्टा है, दो सिफात हम देखते हैं,
नंबर एक मालदार हो, जहेज में क्या लेकर आएगी, मालदार। नंबर दो खूबसूरत, इतनी खूबसूरत हो कि पूरे मोहल्ले में उस जैसी ना हो, ताकि सारा मोहल्ला उसे खूब देखे। और दर हकीकत बीवी के इंतखाब में जो चीज है वो है क्या, नेक हो, नेक। पहले जमाना अजीब था, पहले जो शादियां होती थी ना, बहुत कम ऐसे वाकयात होते थे कि लड़के या लड़की को देखते थे। अगर लड़के से शादी करनी है तो उसके बाप को देखते थे, और लड़की से शादी करनी है तो उसकी मां को देखते थे। ठीक जनाब, ये भी हमारे वक्तों की बात है कि हमेशा शादी के इंतखाब में लड़की की मां को देखा जाता था, लड़की को नहीं देखते थे, उसकी मां को देखा जाता था, और लड़की की शादी में उसके बाप को देखा जाता था कि बाप कैसा है। बाप क्यों, क्योंकि तरबियती निजाम था ना। तो अब मॉडर्न सिस्टम आ गया, अब मां बाप को फिक्र ही नहीं है, अब मां बाप को शादी करने की कोई फिक्र नहीं है, उनको कॉलेज भेज दो, स्कूल भेज दो, यूनिवर्सिटी भेज दो, खुद ही ले आएंगे, फिक्र नहीं है। और अगर ये नहीं है, अगर वहां पर उनको मिलने में रुकावट है तो उनको इंटरनेट लगा दे, इंटरनेट में बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। अब लड़कियां तक एडवांस है, खुद ही अब वो रिश्ते तलाश करें, और अच्छे अच्छे खासे लोग, तरह के बहानों से, तरह तरह की खबरें लेने के लिए टेलीफोन है और मोबाइल है। अब वो पता चला मोबाइल पर बात की, आंख वो ताल्लुक पैदा हो गया, अब तैयार हैं, जो जिससे मिल जाए शादी कर दो बस, क्योंकि उसने लच्छे देके उसको काबू कर लिया, मजे मजे की बातें सुना के कि मैं तुझे चांद पर लेकर जाऊंगा, चांद की सैर कराऊंगा। दादा शादी की पहली रात हुई, उसने कहा आपने मुझसे वादा किया था चांद की सैर कराएंगे, चांद की सैर कराइए, शादी की पहली रात चांद की सैर कराइए, अभी करा देते। अच्छा कैसे कराएंगे, कहा ये देख सर पर बाल देख, एक बाल नहीं है मेरे सर पर, चांद देख ले आज। रोज की शादी हुई तो उसने शादी पहली रात अपनी बीवी से कहा हम तुम्हारे लिए ताड़ा तोड़ कर लाए। उसने कहा तुम ताड़ा क्या तोड़ोगे, नाड़ा तो ठीक बांधो, नाड़ा तो तुझे बांधना नहीं आता, ताड़ा तोड़ कर लाएगा तू। अब हमने शादी के लिए फिक्र की जरूरत नहीं है, बच्चियों को भेज दें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, खुद तलाश करके ले आएंगे, क्योंकि हमने पूछना नहीं है ना, उसके पास मोबाइल भी मौजूद है, और मोबाइल भी मौजूद है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ, ग्लैमर लाइफ वो मौजूद है, पुरकशिश, रिश्ते खुद ही आ जाएंगे, वो खुद ही ले आएगी, इसलिए अब मां बाप को फिक्र की जरूरत ही नहीं है। और अगर मां बाप कहें भी कि भाई इसकी शादी कर दो, पहले तो उसमें राजी नहीं होना, पहले तो मां बाप ही राजी नहीं होते, यानी 18-18 साल की लड़कियां हो जाती हैं, कहते शादी कर दो,
अभी तो हमारी बच्ची बहुत छोटी है, मुन्नी की अभी से शादी कर दे,
18-20 बरस की है, और क्या कहते हैं मुन्नी अभी तो बच्ची है, इतनी जल्दी अपनी बच्ची की शादी कर दे। और फिर जब 20-22 साल की उम्र क्रॉस होती है, उस वक्त रिश्ते आते हैं तो रिश्ते देते नहीं है, क्यों, बच्ची छोटी है, अभी तो मुन्नी पढ़ रही है, अभी तो यूनिवर्सिटी में गुल खिला रही है वो। और जब 20-22 साल की उम्र क्रॉस होती है, अब क्या है, अब उसने मास्टर्स कर लिया, अब उसके स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं मिल रहा, स्टैंडर्ड, अब रिश्ते आ तो रहे हैं, फिर वही चांद वाले रिश्ते आ रहे हैं, वो चांद वाले रिश्ते जो पहली रात चांद की सैर कराएगा, ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, अब वहां देने को तैयार नहीं है, या या फिर तीसरा काम होता है किसी आमिल का पता लगाओ, हमारी बच्ची की शादी में रुकावट है। अब आमिलों के चक्कर लग रहे हैं, उसने काला बकरा मंगवाया वो भी लाके देंगे, लेकिन वो लाके नहीं दे सकते क्योंकि जब आमिल काला बकरा मांग ले आप नहीं ला के दे सकते, क्योंकि वो जो काला बकरा वो मांगते हैं ना उसकी शर्त ये होती है कि उसमें एक सफेद बाल नहीं होना चाहिए, सारे बाल काले हों, और आप नहीं तलाश कर सकते उसे। वो असली जाफरान मांगेगा आपसे, आप नहीं लाके दे सकते, कि जो आप जाफरान उसको ले जाकर देंगे, जो आप जाफरान देखेंगे वो कहेगा ये तो असली नहीं है, वो आप नहीं दे सकते। सरकार क्या करूं, काला बकरा सरकार कहां से लाऊं? हां बेटा हमारे पास है लेकिन महंगा मिलता है, 1000 रुपए का, और जाफरान जो है वो 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए, और हम खुश हैं। आमिल को लाखों रुपए देंगे, लाखों रुपए, सेठ साहब आमिलों को बुलाते हैं लाखों लाखों रुपए देते हैं, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए देते हैं आमिल को, लेकिन अफसोस की बात है दीन के कामों पे पैसा खर्च करते हुए नानी मरती है। लगा इससे पता चलता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे पता चलता है, फरमाते हैं कि माल जहां खर्च होता है मैं समझ जाता हूं माल इसने कमाया कहां से, यानी उसके खर्च से पता चल जाता है। लदा आमिलों पर पैसा निकले, फजूलियात पर पैसा निकले, लेकिन दीन के काम पे पैसा इस्तेमाल ना हो, इसे इसका मकसद यह है कि वो पैसा हमारा, हमने जो कमाई की है वो ठीक नहीं है भाई। अजीब बात है, आमिल है ऐसे ऐसे लाखों रुपए लेकर जाते हैं, सेठ साहब दे रहे हैं उन्हें खटाखट खटाखट, लेकिन कोई आए दीन का खादिम, कोई मदरसे वाला, वो इस बहुत हुआ तो 100 रुपए दे देंगे, वो भी नया नोट नहीं देंगे पुराना नोट, ये हमारी है। दादा वो आमिल के चक्कर लग रहे हैं, उसने कहा कबूतर लेकर आओ, कबूतर काट के उसके खून से तावीज लिखूंगा, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बंदिश है बंदिश। कारोबार ठप, रिश्ता ठप, फला ठप, खूब ठप्पे लग रहे हैं, और कहा देखो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अब गए सब पूछ लिया, हाँ भाई तेरा नाम, तेरी मां का नाम, सब पूछ लिया पहले, कहा कि ठीक है आना फला दिन हम चलेंगे, मैं अमल करूंगा फिर चलेंगे। मकली के कब्रिस्तान ले गए, अब वहां पर कहा देखो पूरा आउटफिट, बड़ा ड्रामाई सीन होता है उनका, ऐसे स्टाइल से करते हैं कि अजीब तमाशे हैं भाई। उसके बाद वहां गए, एक कब्र को खोदा, उसमें से एक गुड़िया निकली या कोई चीज निकली, उसमें सुइयां लगी हुई है, 151 सुइयां लगी हुई है, और ऊपर लिखा हुआ है कि फला बिन फला, यानी उसकी मां का नाम भी लिखा हुआ है, ठप कारोबार ठप, फला ठप, फला ठप ठप। क्या देखो ये है तेरी चची की, मुमानी की, सास की, बहू की, नंद की, खाला की, बेटी की, देवरानी ने इस पर जो है वो सहर किया हुआ है। अब ये रिश्ता दोबारा मत पूछना भाई, एक बार तो मैं बता सकता हूं, ये दोबारा नहीं बता सकता मैं, बहुत मुश्किल है ये रिश्ता। उसने सहर किया हुआ है, बंदिश कराई हुई है, और आलम क्या है हमारा, नमाज हम नहीं पढ़ते। और याद रखना हमारे घर जो सबसे बड़ा जादू है ना, ये जो हमारे घर में टीवी है ना भाई, ये सबसे बड़ा जादू है, ये बहुत बड़ा जादूगर है। जिस घर में टीवी हो उस घर में बरकत रह नहीं सकती, जिस घर में टीवी हो उस घर में चैन हो नहीं सकता, जिस घर में टीवी हो उस घर में मियां बीवी आराम से रह नहीं सकते, ये लाजमी है, लाजमी है। ये वो वजह क्या, उसकी वजह भी सुन लीजिए, उसकी वजह यह है शहर टीवी पे देख रहा है लशपश किस्म की, बालों को ऐसे स्टाइल, खूबसूरत जवान, शौहर ने देखा उधर अपनी बीवी को देखा मैली कुचैली, उसने कहा ये उधर बीवी भी देख रही है सजे सवरे गाल चिकने पोपट पप्पू बने हुए, कि औरतें तो औरतें मर्द भी उनको देखे, ऐसे ऐसे पप्पू बने हुए होते हैं लौंडों के, अब वो भी उनको देख रही है, अपने शौहर को देखेगी ऐसा, तो अच्छा लगेगा। कहते हैं कि वो शायर ने कहा, खूबरियों को चाहते हैं ऐसा, अपनी सूरत को भी देखा चाहिए, अपन चाहिए हूर परी, भाई अपनी शक्ल भी तो देखो, मांगते हूर परी, ऐसी हो वैसी हो, बस ये हो वो हो, बोले तो उसकी मुंह से फूल झड़े, जब देखे तो आंखों से शरबत रूह अफ़ज़ा टपके, चले तो उसकी मस्ताना हिरनी जैसी चाल हो। भाई अपनी शक्ल भी तो देखो यार। जब से हमने रिश्तों के अंदर इन चीजों को देखना शुरू किया, औलाद का पता नहीं है। औलाद का पहला हक है, औलाद का पहला हक है कि हम अपने लिए बीवी का ऐसी इंतखाब करें जो आफीफा हो, नेक हो, पाक दामन हो। ये पहला हक है हमारा, हमारी औलाद का, हम पर जो पहला हक है कि वो बीवी का इंतखाब नेक बीवी का, ये हमारे लिए पहला हक है। और रही बात वो ठप ठपा ठप की बात, तो मैं कह रहा था जिस घर में टीवी हो वहां चैन रह नहीं सकता, मियां बीवी आराम से मोहब्बत से रह नहीं सकते, उस घर में बरकत आ नहीं सकती, उस घर में बीमारियां उस घर से जा नहीं सकती, और उस घर पर जो जादू हो जाए कम है मेरे दोस्त। और दूसरी चीज जो घर में नहुसत का जरिया बनती है, एक है टीवी और दूसरी चीज है तस्वीरें, चाहे वो कायद की तस्वीर हो, चाहे वो पीर साहब की तस्वीर हो, चाहे मौलवी साहब की तस्वीर हो, चाहे अखबारी तस्वीर हो, चाहे नया शादीशुदा जोड़ा पहली पहली मुलाकात की तस्वीर है, जिस घर में तस्वीर हो और टीवी हो, उस घर पर जो मुसीबत हो, जो नहुसत आए, जो बेबरकती हो, कम है मेरे दोस्त। मैं इसकी खराबियों को बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि कितनी खराबियां इन चीजों की, जिस घर में टीवी हो, जिस घर में तस्वीरें हो। बात हो रही थी रिश्ता, जब रिश्ता आता है उस वक्त हम रिश्ता देते नहीं है कि अभी तो मुन्नी है, बच्ची है, यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है, सब है, सब तमाश है, भाई शादी क्यों नहीं हो सकती उसकी, 16 साल 18 साल में क्यों नहीं हो सकती, क्या वजह है उसकी। नतीजा यह हुआ कि जब उम्र बड़ी हुई अब रिश्ते आना बंद। कहते हैं ना, जब दरख्त पर फल होता है तभी पत्थर आता है ना, ये मसल है ना, दरख्त पर फल होगा तभी तो पत्थर आएगा। लगा इसे एक बात याद रखनी चाहिए, जो दीन पर चलता है उसी को पत्थर भी मारे जाते हैं, तो फल लग गया ना, अब पत्थर मारे जा रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। शैतान वसवसे भी वही डालता है, वसवसे की बीमारी भी वही होती, जहां ईमान का खजाना होता है। काफिर को वसवसे नहीं आते, यहूदी की नमाज में यहूदी को, यहूदी भी नमाज पढ़ता है ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसकी नमाज में रुकू नहीं होता, लेकिन उसको नमाज में वसवसे नहीं आते, ये बात सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और मुसलमान नमाज पढ़ते ही वसवसे शुरू हो जाते हैं, क्यों, खजाना है उसके पास, ईमान का खजाना है, बहुत बड़ी दौलत है मेरे दोस्तों, ये ईमान की दौलत, इज्जत और गैरत की दौलत बहुत बड़ी चीज होती है, खुददारी बड़ी चीज होती है, जिससे हम और हमारा मुल्क बिल्कुल खाली है इस वक्त, हम और हमारा मुल्क खाली है इस वक्त, खुददारी क्या होती है, गैरत क्या होती है, इज्जत क्या होती है, हम लोग इससे खाली है, जो हालात है ना, क्यों, हमने पेशाब करने वालों की गुलामी की है, जिनकी पतलूनों में पेशाब भरा हुआ है, जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता उनकी गुलामी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए जब जिनकी गुलामी की, जिनको तमीज नहीं है, तो हमारी गैरत और खुददारी क्या चीज रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, औलाद का तो मैं अर्ज भी कर रहा था कि जो हमारी लड़कियों की शादी में जो पहला देखे तो नतीजा ही होगा कि रिश्ते अच्छे आते हैं, हमारी नाक के नीचे नहीं आते, ये भी मुहावरा है, रिश्ते होते हैं हमारी नाक के नीचे नहीं आते, अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरी होती है, फिर रिश्ते आते हैं, कोई दूसरी शादी के लिए आ रहा है, कोई चांद की सैर कराने वाला आ रहा है, रिश्ते ही नहीं आते। फिर उस वक्त भी हम अजीब आलम है। आजकल हमारा भी अजीब एक मिजाज बना हुआ है, वो ये कि हम भी अपनी बेटी का रिश्ता उसको देने को लिए तैयार हैं जो माल दे माल। कितनी अजीब बात है कि माल की खातिर हम नहीं देखते हम अपनी बेटी किसको दे रहे हैं, बस माल हो उसके पास। औलाद का पहला हक है कि हम अपने लिए, हम अपनी औलाद के लिए उसकी जो मां का इंतखाब करें वो नेक और पाक दामन हो, ये औलाद का पहला हक है हम पर। औलाद से हुकूक मांगते ना कि जी बुढ़े हो गए, मेरा बेटा खिदमत नहीं करता, मेरा बेटा ये नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, हुकूक मांगने से पहले हमें उनके हुकूक देने भी होंगे, ये पहली चीज है। क्योंकि जब हम हुकूक देंगे नहीं, हुकूक मिलेंगे हमें, जब हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे हमारे साथ क्या अच्छा होगा। हम सबका माल खाते हैं, जिस दिन हमारा माल खाया जाए बस फौरन टोपी लेकर सर पर रखकर मस्जिद में पहुंच जाते हैं, हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। जरा हम अपने मामलात का अंदाजा लगाएं, वरासत का, अपनी बहनों के मामले में, अपनी बीवियों के मामले में, अपने माँ बाप के मामले में, कि पता नहीं हमारे माँ बाप यानी जिसके मामले में अंधे हैं, हमारे माँ बाप के हम पर कितने हुकूक बाकी हैं जो हमने अदा नहीं किए। हमारी बीवियों के साथ हमने जो जुल्म किया, जो मामलात किए उस पर हमने माफी ना मांगी हो, हमारी बहनों के हमने जो हुकूक मारे हो और उस पर हमने उनके हक अदा ना किए हो, हमने किसी का माल दबाया हुआ हो और वो माल हमने वापस ना किया हो, कितने हुकूक हमारे जिम्मे होंगे हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जब हम पकड़ में आते हैं ना, जिस वक्त हम पकड़ में आते हैं उस वक्त हमें याद आता है कि हाय तावीज दे दो, कुछ कर दो कि हम इस मुसीबत से हम निकल जाएं। वो वक्त था कि जब हम अपनी जमीन को अपने ही मुसलमान भाइयों पर बरसाने के लिए दे रहे थे कि हमारा मुल्क बच जाएगा, वो वक्त था ना, उस वक्त हम भूल गए थे, हमें सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी हुई थी। आज वो वक्त आ गया कि वही मगरमच्छ हमको भी खा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उस वक्त हमने अपनी अपने को देखा। इसको कहते हैं खुदगर्दी। लिहाजा उस खुदगर्दी का नतीजा ये कि फिर इंसान पकड़ा जाता है। पहले इंसान खुदगर्द बना होता है, माल के एतबार से जवानी का नशा होता है, माल का नशा होता है, हुस्न का नशा होता है, कई नशे होते हैं ना, और कुर्सी का नशा होता है। जब वो दुनिया हर उरूज को जवाल है, सूरज अगर निकलता है रोशन होता है तो रात को डूबता भी है भाई। लिहाजा जिसको ताकत है उसकी ताकत में कमजोरी आती है, जिसके पास माल है वो माल के मामले में बेबस भी होता है, जिसकी जवानी है उसकी जवानी बुढ़ापे से तब्दील होती है, जो आज तख्तोताज पर बैठा हुआ है कल एक दिन तख्तोताज से उतरेगा। लेकिन हमारी हमाकत और बेवकूफी है कि हम अपने अंजाम से बेखबर होते हैं, गफलत में होते हैं, यही गफलत हमको मारती है। दादा ये कितनी बड़ी हकीकत है कि एक दिन इस दुनिया से हमको जाना है। लिहाजा जब जीना है तो उस जीने के ढंग और सलीके ये सीखना है, और वहां जो काम आने वाली चीज है वो सेहतमंद दिल है, उस दिल को बनाना है। और ये दिल बनता है कहां? अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से। ये दिल कहां बनता है? अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से। अहले दिल की सोहबतों में इस दिल की दिल साजी होती है, दिल साजी, दिल की तामीर होती है सोहबत अहलुल्लाह में। उस दिल को बनाना है। कैसे बनाना है? दो सिफात पेश हो गई। एक तो दिल ऐसा हो कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे, माल खर्च करने वाला दिल हो जाए, एक सिफत ये हो कि जहां अल्लाह की दीदार खुशी हो वहां माल खर्च करें। बहुत सारी ये जैसे बारिश होती है ना, जब बारिश बरसती है ना मेरे दोस्तों, कितने गंद कचरे को खुद ही ले जाती है वो, ऐसा होता ना। दादा ये सदका ऐसी चीज है, कितनी बलाओं मुसीबतों को लेकर भाग के ले जाता है, जो आ चुकी होती है या जो आने वाली होती है उनको भी भाग के ले जाता है। ये सदका ऐसी चीज है, और ये कल्बे सलीम हो कि ऐसा दिल हो कि हम खर्च करें, नंबर एक। नंबर दो, अपनी औलाद का मामला, इसमें अभी मजीद कुछ हुकूक है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए पेश करने की, कि इसमें पहला हक तो ये पेश किया कि अपने उस अपनी औलाद के लिए उस माँ का इंतखाब करें, अपनी औलाद के लिए उस माँ का इंतखाब करें जो नेक हो, पाक दामन हो, आफीफा हो और नेक हो, इसका इंतखाब करें। ये पहला हक है। फिर मजीद हुकूक भी हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तौफीक अता फरमाए पेश करने की, कहने की, सुनने की और सबसे बढ़कर यह अमल करने की। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم يا الله تعالى اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، بہت ساری ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر بلائیں اور مصیبتیں ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ضروریات زندگی عطا فرما، کہ ہمارا پورا شہر، پورا ملک بجلی کی سہولت سے پریشان ہے، بجلی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ اس ابتلاء کو ہم پر سے ہٹا دیجئے۔ اور اے کریم مالک، یہ جو غیروں کی صورت میں یہود و نصارہ یا اللہ ہمارے اوپر یا اللہ منہ پھیلائے کھڑے ہوئے مگر مچھوں کی طرح، بھوکے کتوں کی طرح، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اپنی فرما برداری نصیب فرما، خودداری عطا فرما، غیرت عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما، اپنی محبت اور تعلق نصیب فرما، اور یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم ہر لمحہ، ہر سانس آپ کو راضی کریں اور خوش رکھیں۔ یا اللہ اپنا قرب خاص ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما، اپنی رحمت کو نازل فرما، ہمارے مکانات پر رحم فرما، ہمارے گھر بار، ہمارے گھر والوں پر رحمت نازل فرما، ہمارے کاروبار پر رحمت نازل فرما، ہماری املاک پر رحمت نازل فرما، ہمارے لوگوں، ہمارے مسلمان، ہمارے شہر، ہمارے ملک اور سارے عالم پر اسلام پر رحمت کی نازل فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، اے رحمت بحر زخار کے مالک، چوٹیوں پر رحم فرما، بلوں میں، دریا اور سمندروں میں مچھلیوں پر رحم فرما، پرندوں پر رحم فرما، فضاؤں میں اور جانوروں پر رحمت فرما، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اے کریم مالک اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، اس مصیبت کو عافیت سے تبدیل فرما دیجئے، ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، حلال رزق عافیت اور فراواری کے ساتھ عطا فرما، ہم اخلاقی اعتبار سے کمزور اور تنزلی کا شکار ہیں، ہمیں اخلاقی بلندی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دین کو کامل فرما دیجئے، اپنے قرب اور محبت اور تعلق سے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے، اپنے قرب اور محبت اور تعلق کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیے۔